ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी का एक हाथ से सभी वेलकम करेंगे। आप वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारीज संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। आप जे वाटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डायरेक्टर भी हैं। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत मेडिकल विंग के आप उपाध्यक्ष भी हैं। साथ साथ प्रतिवर्ष ज्ञान सरोवर शांतिवन मेडिकल कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा सम्मेलनों में आपका विशेष योगदान रहता है। आप ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर के रूप में अनेक जिम्मेवारी भी भाई साहब संभालते हैं। साथ साथ सेवाओं के प्रबंधक, न्यासी बोर्ड और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच एक समन्वय के रूप में कार्य करना, दूसरा नई नई सेवाओं के विकास का प्रबंधन करना हॉस्पिटल में, साथ साथ तीन अस्पतालों की गतिविधियों का भी आप प्रबंधन करते हैं, जैसे पीसी परमार ग्लोबल हॉस्पिटल, आई केयर सेंटर तलहटी आबू रोड, राधा मोहन मल्होत्रा ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर तलहटी आबू रोड, श्री आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल जालोर, जो जालोर में चलता है, यहीं से भाई साहब उसके पूरे देखभाल भी करते हैं। साथ साथ ग्लोबल हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग जो नीचे बना उसकी भी आप देखभाल करते हैं। सरोज लाल जी मेहरोत्रा ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज तलहटी, आपकी विशेष प्रतिभा संस्कृत युवा संस्था राजस्थान ने आपकी विशिष्ट सेवाओं और समाज को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भारत गौरव पुरस्कार से भाई साहब को सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का हम वेलकम करते हैं। पुनः आपका ज्ञान सरोवर में हृदय से, दिल से, तालियों से, एक बार दोबारा तालियों से आपका स्वागत है। अभी हम सुनेंगे आपसे आदरणीय डॉक्टर प्रताप भाई जी से ब्राह्मणों के लिए स्वस्थ जीवन शैली।
ओम शांति। बाबा ने तो कहा है ना कि हम सब ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट्स हैं। विशेषताएं भी बाबा ने ही हमारे जीवन में भरी हैं। मुझे पहला परिचय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से, पहली बार जब मैं सेवा स्थान पे गया था तो मुझे याद है जो शिव जयंती पे भाषण था तो भाई जो सुना रहे थे उन्होंने कहा कि भगवान बूढ़े साधारण तन में आया है और हम सबसे बुराइयों का दान मांग रहा है। तो वही पुरुषार्थ हम अभी तक कर रहे हैं कि हम जो बाबा हमें कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, हम ऐसे शुभ भावनाओं सबके प्रति कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं चले। नेगेटिविटी की बात तो दूर है, वो लक्ष्य है हमारा हम सबका। ब्राह्मण जीवन में ये हम जरूर मानते हैं कि हम बहुत सी चीजों से भगवान ने हमें बचा दिया है। आप देखिए, जब हम ईश्वरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बने तो साप्ताहिक कोर्स पूरा करते ही हमें क्या सबसे पहली धारणा मिली, वो शुद्ध भोजन की। सात्विक भोजन हमें करना है। फिर साथ में हमें कुछ नियम मिले कि हमें कैसे अपने जीवन को चलाना है, पवित्रता की बात है, या हमें सुबह उठकर मेडिटेशन करनी है, मुरली क्लास में आना है। तो आप देखें, ये हमारे लिए कैसे रक्षा कवच बन गया है, हम लोगों के लिए जो भी ब्राह्मण जीवन में आए हैं उनके लिए एक रक्षा कवच बन गया है। आज जो रिसर्च या विज्ञान जो कह रहा है, बाबा ने हमें कई वर्षों पहले बता दिया था। अब आप देखें, जो हमारी हेल्थ है वो हॉस्पिटल और डॉक्टर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में तब जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, हेल्दी होते हैं तो नहीं जाते ना डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के पास। कोई जाता है जब हेल्दी होता है हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्थ के लिए हम खुद जवाबदार हैं, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने हमें जो भी ये नियम बताए हैं, जो भी धारणाएं बताई हैं, वो धारणाएं हमारे, हालांकि वो मन का पुरुषार्थ है, लेकिन मन और तन का बहुत गहरा संबंध है। जो मन में होता है वो तन को प्रभावित करता है, और तन में अगर कोई तकलीफ होती है तो वो मन को भी विचलित कर देती है। आप देखो आज इतने हॉस्पिटल्स बन गए हैं, इतने डॉक्टर्स हो गए हैं, क्या लोगों की हेल्थ इंप्रूव हुई है? आज आप अगर रिसर्च करो, कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो दवाई नहीं खाता हो। हम लोग सर दर्द होता है तो सबसे पहले पैरासिटामोल ले लेते हैं, ये जाने बिना कि सर दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो बोलते हैं ये गोली खा लो, लेकिन हो क्यों रहा है सर दर्द? सर दर्द हो सकता है हमें नींद पूरी नहीं की हो, या हमें कोई चिंता लगी हो, या हो सकता है हमें हमारी नजर कमजोर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारा मन क्या करता है, जब दर्द होता है तो सबसे पहले कुछ ना कुछ ले लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो भाव ये कि अभी तक जो कुछ हो रहा था वो हम जो सिम्टम्स होते थे, जो भाव उत्पन्न होते थे, उनका इलाज करते थे, जिसको बैंडेड कहते हैं। भाई आपने कुछ हुआ तो उसका इलाज ये हुआ कि उसके लिए दवा खा ली, लेकिन हमें जरूरत किस बात की है? हमें जरूरत इस बात की है जो बाबा हमें सात्विक जीवन पद्धति सिखा रहा है, वो जीवन पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें बाबा की जो लास्ट अव्यक्त मुरलियां भी चली, बार बार बाबा ने एम्फेसाइज किया कि हमें लंबे समय की तैयारी चाहिए, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, जो कुछ भी होगा अचानक होगा, आपको एवर रेडी रहना है। अब जब हलचल होती है, जब कोई भी ऐसी बात सामने आ जाती है जो हमें पसंद नहीं होती, या जो हमें असहज कर देती है, अनकंफर्टेबल बना देती है, तो क्या होता है, हमारे फेस पर आ जाती है। अब मान लीजिए कोई चीज, कोई भी स्थिति में परिवर्तन आया तो सबसे पहले हमारे फेस पे ही परिवर्तन आता है, तभी कहते हैं फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। तो बाबा क्यों हमें ये एम्फेसाइज करता है कि हमारा चेहरा जो है वो हमेशा खुशनुमा होना चाहिए, चेहरे पे एक झलक हो, रूहान हो। लेकिन वो संभव कैसे होगी? वो संभव तभी हो सकती है जब हमारे मन में शुभ चिंतन हो, पॉजिटिविटी हो, नेगेटिविटी नहीं हो, जब हमारे जीवन में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो। जब मैं बचपन में गीता पढ़ता था तो गीता में मुझे जो अभी तक याद है, योगी के लक्षण जो बताए भगवान ने अर्जुन को, वो यही बताया कि योगी वो जो निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि सुख दुख रोग शोक सब में समरस स्थिति हो उसकी। तो हमारा आज का पुरुषार्थ क्या है? यही पुरुषार्थ है ना, कि बाहर कुछ भी होता रहे, बाहर की दुनिया में कुछ भी हलचल हो, लेकिन वो हमारे मन को प्रभावित नहीं करे, हमारी स्थिति एक रस रहे, अचल रहे, अडोल रहे, कुछ भी हमें हिला नहीं सके, वो कैसे होगा? अब जैसे हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है, तो जो भी हम संकल्प क्रिएट करते हैं वो संकल्प खुशी के हो सकते हैं, वो संकल्प चिंता के हो सकते हैं, वो संकल्प जिम्मेवारी के हो सकते हैं, वो संकल्प किसी के प्रति परचिंतन के हो सकते हैं। उनका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, मन पर तो पड़ता ही पड़ता है। अब देखिए जब मन उदास होता है तो हमारा खाना खाने को मन ही नहीं करता, मन उदास होता है तो नींद भी नहीं आती हमें, किसी से बात करने को मन भी नहीं करता, और वो सब शरीर को भी प्रभावित करता है, जिसको आप आजकल स्ट्रेस कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, दबाव कहते हैं। स्ट्रेस भी क्या है, प्रेशर भी क्या है, देखा जाए तो हमारी वीकनेस है। अब देखिए स्ट्रेस में दो कंपोनेंट होती है, एक तो बाहर की सिचुएशन, एक हमारा अंदर का रिस्पांस, यानी हमारी अंदर की शक्ति कितनी है और बाहर से प्रेशर कितना है। बाहर के प्रेशर तो बढ़ रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे, आप सभी देखते हैं आजकल की दुनिया में चुटकी भर में सारी सिचुएशन बदल जाती है। हमने कोविड का समय देखा, कोविड के समय में सबसे बड़ी बात थी वो था मन में भय, पता नहीं क्या हो जाएगा। और अभी जैसे अभी देखा हमने, ये जो अभी 7 तारीख को हुआ, इतना सब कुछ हुआ, हुआ क्या? हम लोग तो यहाँ आराम से बैठे हुए थे, लेकिन जो टेलीविजन पे न्यूज आ रही है, जो मन पे प्रेशर हो रहा है, वो सब शरीर को भी तो प्रभावित करता है, हमारा समय कितना जाता है। तो इसलिए सबसे पहले ये है कि स्वस्थ जीवन के लिए बाबा ने हमें जो सिखाया है कि हम अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। आज आप देखिए, कोई डायबिटीज किसी को बीमारी होती है या ब्लड प्रेशर होता है, तो उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप शुगर का परहेज करिए या नमक का परहेज करिए। परहेज कर पाते हैं लोग? नहीं कर पाते, क्योंकि स्वयं पर कंट्रोल ही नहीं है। जो चीज मना की जाती है उसी को करने का मन करता है। तो जब सेंस ऑफ कंट्रोल आ जाती है लाइफ में, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, अगर वो पेशेंट को कहेंगे आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, आधा घंटा चलना चाहिए, लेकिन कितने लोग रोज चल पाते हैं? परसेंटेज अभी जैसे अमेरिका जैसे देश में जब पूछा गया कि लोगों को जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं, यानी हमारा वेट कंट्रोल में होना चाहिए, हम सिगरेट नहीं पिए, अल्कोहल नहीं पिए, और हम रोज व्यायाम करें, हमें नींद अच्छी आए, कितने लोग निकले? सिर्फ 2.7%, मतलब 3% से भी कम लोग थे जो एक किस्म से उन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करते थे। तो आज एजुकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, अवेयरनेस है, लोगों को पता है। मुझे याद है जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे वो सिगरेट पीते थे, तो उनसे बच्चों ने पूछा, एक दिन हॉस्टल का प्रोग्राम था, वैसे तो नहीं पूछ सकते थे, लेकिन जब बच्चे इकट्ठे होते हैं शाम को, तो किसी ने उनसे पूछा कि आप सिगरेट क्यों पीते हैं, आप तो पेशेंट्स को मना करते हैं। तो उन्होंने वो सागर मंथन की कहानी सुना दी, वो देवताओं और असुरों का जो सागर मंथन हुआ था ना, तो कहते वो शिव जी ने विष पी लिया था, मैं इसलिए सिगरेट पीता हूं ताकि मेरे पेशेंट नहीं पिए। तो ये उदाहरण देते हैं, सबको पता है, मतलब जो रियल अवेयरनेस है, जैसे हम कहते हैं रियल, हमें भी पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, फिर भी लोग कर रहे हैं। टोबैको जो है बढ़ रहा है, अल्कोहल बढ़ रही है, अल्कोहल की कंजम्पशन। माउंट आबू में तो गुजरात से ज्यादा टूरिस्ट किस लिए आते हैं? वीकेंड पे आप देखोगे तो यहाँ भीड़ लगी होती है, कार पार्क करने के लिए जगह नहीं होती, इसलिए कि उनको यहाँ अल्कोहल मिलती है, गुजरात में प्रोहिबिशन है। तो भाव ये कि सबको सब कुछ पता है, हमें बाबा ने इतना सशक्त बना दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया कि हम लोगों ने सात्विक भोजन ग्रहण शुरू किया। अब हमारा सात्विक भोजन लोग तो समझते हैं शायद वेजिटेरियन डाइट, प्लांट बेस्ड है, लेकिन हमारे यहाँ जो सात्विक भोजन की परिभाषा क्या है, वो परिभाषा भी ये कि जो बाबा की याद में बनाया गया भोजन, और याद में ही हम स्वीकार करें। लोग अभी वो बाहर भी अभी साइंस ये मान रही है कि भोजन जो साइलेंस में किया जाए उसको कहते हैं माइंडफुलनेस ईटिंग, कि जो भगवान की, वो तो भगवान को नहीं मानते, जो वो कहते हैं कि अगर आप खाना भोजन कर रहे हैं तो उस समय टेलीविजन नहीं देख रहे हो, अखबार नहीं पढ़ रहे हो, फोन नहीं सुन रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, उसको वो माइंडफुलनेस ईटिंग कहते हैं। लेकिन हम लोग जो शांति में रह के बाबा की याद में भोजन स्वीकार करते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है? उसका लाभ ये होता है कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का महत्व क्या है? दूसरी, जो साइंस बता रही है उसको हम फॉलो कर रहे हैं पहले से। अब साइंस कह रही है, लोग अभी जो नॉन वेजिट, पहले बोलते थे कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहां से मिलेगी, शरीर ग्रो कैसे करेगा, कुछ डॉक्टर्स अभी भी एडवाइस करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी डॉक्टर्स अब ये समझते हैं कि जो वेजिटेरियन डाइट है वो हार्ट के लिए भी अच्छी है, किडनीज के लिए भी अच्छी है, और ब्रेन के लिए भी अच्छी है। हार्ट के लिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, और प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है वो उसमें वो बात नहीं है। तो इसलिए हमें ये सोचना है कि भगवान ने हमें कैसा वरदान दे दिया पहले ही। लेकिन अभी देखिए एक चीज और बढ़ रही है, वो है मोटापा। अभी भोजन हमें कितना करना है, क्या करना है और किस समय करना है, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। अभी देखिए जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है चाहे अमेरिका है, वहां ओबेसिटी के रेट्स बहुत हैं, लेकिन भारत में भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए ओबेसिटी बढ़ रही है। अब उसके साथ साथ फिर जैसे ही कोई मोटा होता है तो उसको ब्लड प्रेशर का रिस्क भी बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है, उसके ज्वाइंट भी दुखने शुरू हो जाएंगे। और ये देखा गया कि ओबेसिटी जो है वो कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो इसलिए वेट जो है, हमें भोजन जब बाबा की याद में करते हैं, अभी कहते भी है ना, हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट, खुशी जैसी खुराक नहीं। जब लोग चिंतित होते हैं ना, जो डिप्रेस्ड होते हैं उदास होते हैं, वो भोजन ज्यादा करते हैं। जो लोग खुश होते हैं वो भोजन कम करेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, जो उनके जीवन में खालीपन होता है ना, उसको वो भोजन से भरने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए अभी क्या फैशन हो गया, लोग शाम का खाना तो घर में खाते ही नहीं है, ऑर्डर करते हैं। और वो जो ऑर्डर करते हैं, जो फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं, उसमें शुगर भी ज्यादा होती है, उसमें फैट्स भी ज्यादा होती हैं, वो शरीर के लिए हेल्दी नहीं होता। और फिर प्रोसेस्ड फूड्स आ गए हैं, रेडीमेड फूड्स मिलते हैं, चाहे वो बिस्कुट्स हैं या क्रैकर्स हैं या कुछ हैं। प्रोसेस ये कहते हैं कि जितना कोई भोजन प्रोसेस किया होगा ना, उतना उसको उतनी देरी लगेगी डाइजेशन में। जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, अभी जैसे हम पनीर घर में भी बनाते हैं, फिर आजकल चीज आ गया, पनीर जो घर में बनाते हैं वो इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो चीज बाहर बनेगा तो वो चीज प्रोसेस होगा, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले होंगे, क्योंकि उसको लंबे समय तक रखना है। तो हम भी कभी कभी, अब ब्राह्मण भी इस बात में सुस्त हो गए, ये तो मशीन से बनी हुई चीज है ना, ये हम खा सकते हैं। लेकिन खा सकते हैं वो ठीक है, लेकिन उसका हेल्थ बेनिफिट उसको हमें क्या मिलेगा? डाइजेशन में देरी लगेगी, फिर उसके बाद हो सकता है कॉन्स्टिपेशन भी हो। तो इसलिए हमें जो नेचुरल फूड्स हैं, नेचुरल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है, ग्रीन्स हैं, वो ज्यादा लेनी चाहिए। चाहे हम ब्राह्मण हैं तो हमें भी ये सोचना है कि हम टोली की कितनी मात्रा लें। अभी क्या होता है, कभी कभी एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है, प्रोसेस ये बन जाता है कि हमें चाय के साथ टोली चाहिए शाम को, पर जरूरी तो नहीं है। तो भाव ये कि हमें ये देखना है व्हाट इज गुड फॉर अस। हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। आयुर्वेदा में तो कहते हैं कि हर एक की प्रकृति को एनालाइज करते हैं, कोई वात है, कोई पित्त है, कोई कफ है, तो उसके हिसाब से भोजन भी कर रहे हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। ये कहने का भाव ये, हर एक की अपनी प्रवृत्ति है, हर एक की अपनी प्रकृति है, किसी को कुछ सूट करेगा, किसी को कुछ सूट करेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उस समय हमें ध्यान भी रखना पड़ता है, सॉल्ट भी कट डाउन करना पड़ता है, नॉर्मल से भी कट डाउन करना पड़ता है, शुगर भी कट डाउन करनी पड़ती है। तो वो हमें ये देखना है कि हम अपने डॉक्टर खुद बने। भोजन एक बहुत बड़ी चीज है। ब्राह्मणों में तो हम सब देखते हैं हमारा पुरुषार्थ कितना जाता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी हम सेलिब्रेशन करते हैं तो भोजन का कितना महत्व होता है। आधे से ज्यादा लोग तो भोजन, ब्रह्मा भोजन बनाने में बिजी हो जाते हैं। तो भाव ये कि हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी फिजिकल एक्टिविटी के अनुसार, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कितनी है, जो हार्ड काम करते हैं, जो फिजिकल काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जो लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठते हैं या ऑफिस का काम करते हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट कम होगी। दोनों की रिक्वायरमेंट सेम नहीं हो सकती। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा वेट भी बैलेंस्ड रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हम इन छोटी छोटी, क्योंकि देखिए संसार बनता है छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं और उन छोटी छोटी घटनाओं से संसार बनता है। तो हमारे शरीर में भी यही होता है कि हम कैलोरीज कितनी कंज्यूम करते हैं और कितनी बर्न करते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारी की फिजिकल एक्टिविटी कैसे है। तो बाबा ने जो हमें एक ब्लेसिंग दी है कि हम सात्विक भोजन लेते हैं, हम भोजन बाबा की याद में लेते हैं, भोजन बाबा हमेशा ये कहता है कि भोजन को हम इतने प्यार से स्वीकार करें, एक एक कोर जो हम ले रहे हैं उसका हमें आनंद अनुभव हो। अभी जैसे हम सुनते हैं कि देवताओं के लिए 56 प्रकार के भोजन होते हैं, सुनते हैं, लेकिन अभी देखिए आपने किसी देवता को ओवरवेट देखा क्या? जो भी चाहे लक्ष्मी नारायण है या सीताराम है, तो कहने का भाव ये कि ये चीजें नेचुरल हो जानी चाहिए हमारी लाइफ में, स्वाभाविक हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई चीज सामने होती है तो हम स्वीकार कर लेते हैं उसको। तो भोजन सात्विक बहुत आवश्यक है। तो भोजन के बारे में तो हम सभी, मैं कहूंगा, पास हैं। हम सब बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत सी चीजों से बचे हुए हैं, सब नशों से भी मुक्त हो गए, बाहर के भोजन से भी मुक्त हो गए। बस सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार हमें भोजन ग्रहण करना है और ताकि हम स्वस्थ रहें। अब भोजन के बाद आती है बात चिंतन की कि हमारा चिंतन, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे विचार कैसे चलते हैं, और वो चिंतन की वजह से ही हमारे जीवन में प्रेशर उत्पन्न होता है। और ये अभी साइंस मानती है कि बहुत सी डिजीजेस जो है ना वो मन से शुरू होती हैं, स्ट्रेस की वजह से, प्रेशर की वजह से। तो वो भी बाबा ने हमारा ले लिया, बाबा ने कह दिया ना कि अगर हम कहेंगे मेरा बाबा तो बाबा हमारे साथ है। तो जब बाबा हमारे साथ है तो फिर कुछ फिक्रात नहीं हमें। तो ये जरूरी है कि हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है कि मन में कुछ भी उलझन आए। अब बाबा ने जो हमें एक बात बताई हुई है कि रात को सोते हुए हम, कुछ लोग बाबा को पत्र लिखते हैं, कुछ लोग अपना चार्ट लिखते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि हम सब रेगुलर नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग अपना चार्ट लिखते हैं, अपने बाबा को पत्र लिखते हैं, यानी अपने दिल का हाल बता देते हैं, ये साइंस ने भी बता दिया कि जो लोग अपना डेली जर्नल लिखते हैं उनकी जो इम्यूनिटी है, उनकी बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि वो मन पे कुछ बोझ नहीं रखते। तो रोज रात को हम जो अपने मन को हल्का करके सोते हैं, बाबा कहते हैं ना कि भाई जो तीन पॉइंट्स की भी बात की थी, एक पॉइंट हम खुद हैं और एक पॉइंट बाबा है और एक पॉइंट है ड्रामा। तो हम जब ड्रामा को यूज करके और क्लियर क्लीन करके अपने माइंड को सोते हैं तो सुबह हम फ्रेश सोते हैं। नहीं तो बहुत से लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है। अभी ये भी साइंस कहती है कि 12 बजे से पहले एक घंटा नींद और 12 बजे के बाद की 2 घंटे नींद बराबर है। तो हमें, जैसे दुनिया में तो सिर्फ कहते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन देखो उस बात में भी रहस्य तो है ना। अगर हम 9:30 मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाते हैं, तो अगर मान लीजिए 2 घंटे की नींद आपने 12 बजे से पहले कर ली और बाद में 3 घंटे की नींद कर ली, 3 बजे भी 3:30 बजे भी उठ गए, तो कितनी नींद होगी? 4 और 3, 7 घंटे तो नींद हो गई। विज्ञान भी यही कहता कि 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो नींद भी, क्वालिटी ऑफ स्लीप, सिर्फ नींद नहीं कि हमारे नींद की गुणवत्ता कैसे है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या हमारी नींद इंटरप्ट हो जाती है, क्या हमें कुछ स्वप्न आते हैं। स्वप्न भी कोई प्लेजेंट आए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर किसी को पैनिक होता है, किसी को ऐसे स्वप्न आते हैं, तो उसको भी अपना चिंतन करेक्ट करने की जरूरत है सोने से पहले। तो सोने से पहले बाबा ने जैसे नियम बनाया हुआ है कि हम 10 मिनट बाबा की याद में बैठ के, आराम से बैठ के 10-15 मिनट फिर सोते हैं, या कुछ पढ़ते हैं, कुछ लोग कुछ मुरली अध्ययन करते हैं, लेकिन लोग तो टेलीविजन देखते हुए सोते हैं। उनका फिर आप भी रिसर्च ये बता रही है कि जो ब्लू लाइट होती है उससे नींद ही फिट जाती है। हाँ ये जरूर है कि हमारे नींद का जो स्थान है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, कभी हमारा मैट्रेस ज्यादा हार्ड नहीं हो, कमरे में रोशनी नहीं होनी चाहिए, डार्क हो तो नींद, मेलेटोनिन होती है जो ब्रेन में प्रोड्यूस होती है उससे नींद अच्छी आती है, रोज एक निश्चित समय नींद का फिक्स करते हैं उसके हिसाब से चलेंगे तो भी नींद अच्छी आती है। तो स्लीप भी बहुत जरूरी है, अगर नींद अच्छी होगी तो हमारा अमृत वेला भी अच्छा होगा। तो इसलिए नींद का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती कुछ करते रहें, चिंतन हो गया कभी कोई बात हो गई तो इसलिए वो उसको फुल स्टॉप लगाने का, वो जो लिखने की आदत है, कुछ भी चल रहा है मन में उसको लिखें, और लिखने से जो है वो मन हल्का हो जाता, बाबा को सौंप दिया आपने। तो हमारे पास एक सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा की सपोर्ट तो हमारे साथ हमेशा ही है, तो जब बाबा की सपोर्ट साथ में, बाबा कहते हैं आपने एक बार प्यार से मेरा बाबा कहा तो बाबा आपके साथ है, तो रात को हमें सोते हुए अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखना है ताकि हमें नींद अच्छी आए। नींद जो है बॉडी को रिजुनेट करती है, जो सेल्स डेड हो जाते हैं जो सेल्स को रिपेयर करती है बॉडी के सिस्टम को। आप ये सोचिए नींद किसी को ना आए तो उसका क्या हाल होगा। तो एक किस्म से नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, मन के लिए भी जरूरी है। तो हमें कम से कम 5.5 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, अगर हम 10 बजे सोते हैं तो सुबह 3:30 उठ सकते हैं, अगर आप सोते ही 11 बजे हैं 11:30 बजे हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप फ्रेश नहीं उठेंगे, फ्रेश नहीं उठेंगे तो अमृत वेला फ्रेश नहीं हो पाएगा। और ये देखा है मैंने अपने पर्सनल अनुभव से कि अगर आप रात के समय कुछ न कुछ लिखते हैं, मुरली की पॉइंट्स लिख के उसको रिवाइज करके सोते हैं तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पावरफुल चिंतन से आप जा रहे हैं नींद में। तो फिर अगर कोई ड्रीम्स भी आएंगे तो वो बहुत पॉजिटिव ड्रीम्स आएंगे। इसलिए हमें ये सोचना है कि हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब कभी कभी लोग जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर शाम के समय हम थोड़ा दूध पी लेते हैं उससे भी नींद अच्छी आती है, और शाम को चाय कॉफी को जितना अवॉइड करें, शाम को अगर 4 बजे 5 बजे के बाद चाय कॉफी नहीं पिए, क्योंकि वो भी स्टिमुलेट करती है, वो भी नींद को डिस्टर्ब करती है हमारी, क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन होता है तो कैफीन जो है ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन दूध में जो होता है वो सेरोटोनिन होता है, वो स्लीप इंड्यूस करता है। तो वो हमारा भोजन भी जो है नींद से सोने से कम 1.5-2 घंटे पहले होना चाहिए, उससे भी ठीक रहता है सिस्टम हमारा। और वैसे भी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि आफ्टर लंच रेस्ट वाइल, आफ्टर स्लीप आफ्टर डिनर वॉक ए माइल, कि खाने के बाद हम थोड़ा चलें, थोड़ा जेंटल स्ट्रॉल भी करेंगे, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हम रेस करें, लेकिन हल्का सा भी थोड़ा चलेंगे तो वो भी नींद के लिए अच्छा रहता है। तो नींद भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम निद्राजीत बनना चाहते हैं, बहुत लोग पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो नींद की कंपनसेट करना पड़ता है। अगर हम नींद कम करेंगे तो दिन में नींद आएगी। मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि अगर हम नींद ठीक से नहीं करते तो जहां हम काम करते हैं वहां फिर लेथार्जिक महसूस करते हैं, फिर हम लोग कॉफी पिएंगे ताकि एक्टिव रहें। तो इसलिए नींद का भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लोग नींद की टैबलेट्स खाते हैं, लेकिन हम अगर नेचुरल स्लीप है, हाँ कभी कोई आप थक गए हैं बहुत, आपको डर लग रहा है तो वो ठीक है कभी कभार, लेकिन रेगुलर हमारी नींद नेचुरल होनी चाहिए। लाइट भी नहीं हो, हमारा बेड भी अच्छा हो, सब कुछ डिस्टरबेंस भी नहीं हो, शोर होता है तो भी नींद नहीं आती, तो वो सब चीजों का ध्यान रखना है हमने। फिर उसके बाद बात आती है कि अब जैसे मैंने फिजिकल एक्टिविटी की बात की कि डिनर से पहले हम थोड़ा चलें, ऐसे दिन के समय भी हमें चलने की जरूरत है। कम से कम 1/2 घंटा हमें वॉक करनी है कम से कम, और 5 दिन एटलीस्ट वीक में चलें। मान लीजिए अगर आप पूरे 7 दिन नहीं चल पाते तो ये ना आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो 150 मिनट की हर वीक में होनी चाहिए। अभी साइंस ये भी कहती है अगर आप 30 मिनट एक साथ नहीं चल सकते, 15-15 मिनट भी दो बार भी चलेंगे तो वो भी सफिशिएंट है। वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ये जो लार्ज मसल्स होते हैं ये जब एक्टिवेट होते हैं तो हार्ट को जो रिटर्न ब्लड है वो ठीक से पहुंचता है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, हम कितने भी बिजी क्यों ना हो। मुझे याद है कोविड के समय में जब कोविड हो जाता तो आपको कमरे में बंद कर देते थे, तब भी मैंने अपने रूम में भी चलना जारी रखा, वॉक की पूरी आधा घंटा 40 मिनट। तो हमें कोई भागना नहीं है, हमारे कम से कम ये होना चाहिए कि 110 स्टेप्स पर मिनट हो हम जब चलें। शुरू में हो सकता है कम होंगे लेकिन धीरे धीरे हम उसको स्पीड अप कर सकते हैं। वॉकिंग तो बेस्ट है क्योंकि उसमें किसी साधन की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ थोड़ा बहुत जिन लोगों को योगा आसन करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की आदत है तो वो तो रेगुलरली करते हैं, लेकिन अब जिन्होंने नया शुरू करना है उनके लिए ये है कि आप 10 मिनट पहले 10 मिनट वॉक करें, फिर अगले दिन उसको 2 मिनट और बढ़ा दें, 12 मिनट कर दें, फिर 15 मिनट कर दें, ग्रेजुअली बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी नहीं तो क्या होगा कि अगर आदत नहीं होगी तो थक जाएंगे, मसल्स पेन करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि एक्सरसाइज वॉकिंग बहुत जरूरी है, कम से कम 30 मिनट रोज, कोई ना कोई बहाने से। अभी देखिए हम सबको आदत पड़ गई है कि हमेशा हमें साधन चाहिए। अभी यहाँ हारमोनी हॉल से अगर हमें डाइनिंग हॉल भी जाना है तो हम सोचते हैं कि गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन हम जितना चलेंगे इसके लिए भी एक्सक्यूज ढूंढने पड़ेंगे। लोग कहते हैं अगर आप ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से दूर जो पार्क गाड़ी अपनी पार्क कर दें ताकि थोड़ी देर भी चलना पड़ जाए। बस स्टैंड बस पकड़ते हैं तो घर से बस स्टॉप तक तो वॉक करते हुए जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये चलने का भी एक रुचि क्रिएट करें हम अपने आप में, वॉकिंग की एक इंटरेस्ट क्रिएट करें। वॉकिंग से हम बहुत सी मुश्किलों से बच जाते हैं, हमारे मसल्स ठीक रहते हैं। अभी देखो जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं अगर हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो आजकल क्या होता है जो लोग ज्यादा चलते नहीं उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं। फिर लोग डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते हैं आप कैल्शियम लो, वाइटमिन D3 लो। तो अगर हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अभी उसके साथ साथ जो बाबा हमें जो भी धारणा देते हैं कि हमें एक समय में तीनों सेवा करनी है, मन सा वाचा कर्मणा। अब जो शुरू से ये आदत थी बाबा घुमाने के लिए ले जाते थे, एक्सरसाइज के लिए ले जाते, फिजिकल एक्टिविटी भी। हमें याद है जब हम शुरू शुरू में मधुबन में आते थे तो सब फिजिकल काम करने के लिए भी टाइम मिलता था कि आप सब्जी काटें, अनाज साफ करें, कुछ ना कुछ कर्मणा से भी कंट्रीब्यूट करें। तो हर चीज का महत्व है। जो भी बाबा नियम बनाए हैं हमारे लिए, जो भी हमारे सामने उदाहरण सेट किए हैं वो सब हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में एटलीस्ट 30 मिनट समय फिजिकल एक्टिविटी करनी है। पहले पुराने जमाने में तो क्या होता था, लोग सब जगह पैदल चल के जाते थे, बाहर अपना टाइम स्पेंड करते थे ज्यादा। अभी देखो अभी डॉक्टर्स कहते हैं आपको थोड़ा समय धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि वाइटमिन D3 नेचुरल होता है। जितने भी येलो कलर्ड फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैंगोज हैं आजकल, कैरेट है, येलो जो भी टमाटर हैं, जो भी येलो स्किन्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें वाइटमिन डी होता है, वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। लेकिन जब धूप लगती है तभी वो कन्वर्ट होता है एक्टिव वाइटमिन में। तो अभी हम धूप में बैठते कहाँ हैं, सनशाइन अपने आप को देते कहाँ हैं, हमारा सारा कारोबार घर के अंदर चलता है। तो वो भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि फिजिकली एक्टिविटी से अगर हम बाहर घूमने जाएंगे तो आधा घंटा तो हम सनलाइट में रहेंगे। आजकल तो ऐसे एप्स आ गए हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपको कितनी सनलाइट मिली है। तो पुराने जमाने में कितना धूप में काम भी करते थे, धूप में एक्सपोज करते थे। अभी हम ठीक है, हमें अपने आप को सेफ भी रखना है, तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ इनडायरेक्ट बेनिफिट आ जाते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी संबंधों की बात, कनेक्टेडनेस, कि हम आपस में कनेक्टेड कितना है। क्योंकि क्या होता है, जो अकेले लोग रहते हैं, लोनली होते हैं, लोगों ने तो यहां तक रिसर्च की कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, अब अकेले हैं, अगर उन्होंने अपने साथ कोई पेट रख लिया, डॉग या बिल्ली या कुछ भी रख लिया, तो उससे भी वो बातें करते रहेंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो कनेक्टेड का मतलब ये है कि हमें कनेक्टेड रहना। हमें तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना कि ब्राह्मण परिवार है हमारे सामने, जब भी मिलते हैं तो हम क्या बात करते हैं, पॉजिटिव बात ही करते हैं। तो संबंधों का भी मधुर होना बहुत जरूरी है, कनेक्टेडनेस बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट से भी हमें कनेक्टेडनेस रहना चाहिए। अब देखो, जिसको हम विकास कहते हैं, उस विकास की दौड़ में हमने अपने एनवायरमेंट को कितना पोल्यूट कर दिया है। अभी एनवायरमेंट पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन पहले एक नेचुरल था। ये इतना प्लास्टिक, इतना गार्बेज हम जनरेट कर रहे हैं, लोगों के सामने समस्या बन गई, वो गार्बेज जाए तो जाए कहां। अभी कहते हैं नहीं, अपने साथ आप कपड़े का थैला रखो, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, डिस्पोजेबल चीजें नहीं यूज करो, अब बॉटल्स हैं पानी की। कितना कुछ हम एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, वो सब हमारे पास वापस आता है। अभी वो कहते हैं कि हमारे भोजन में भी कितना प्लास्टिक आ जाता है। तो भाव सिर्फ ये कि हमें कनेक्टेड केवल संबंधों में, प्रकृति से भी कनेक्टेड रहना है। प्रकृति की हम कैसे संभाल करें, अब जैसे छोटी छोटी बातें हैं, अभी हम चीज अब देखें कितनी वेस्टेज होती है। भोजन हम करते हैं, कोई चीज हमें पसंद नहीं आई, हम छोड़ देते हैं, वो कितना वेस्टेज होता है। तो वो वेस्टेज को भी हमें प्रिवेंट करना है। हम लोग बहुत सी चीजें ऐसी खरीद लेते हैं, अपने घर में रखते हैं, और जो आपने कई महीनों तक यूज भी नहीं की होगी, बहुत सी चीजें पड़ी होंगी। आजकल की जो सोसाइटी है, एडवर्टाइजिंग मीडिया है, वो तो लोगों को टेम्प्ट करता है, जिसको हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं। अभी जब बजट पेश किया था सरकार ने, इस बार इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा दी, वो बढ़ा दी तो उनकी प्रोजेक्शन क्या थी कि भाई इनकम लोगों के पास होगी तो वो ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे ज्यादा वृद्धि होगी। लेकिन आप सोचिए, बहुत सी चीजें हमें जरूरत नहीं होती हैं, वो भी हम खरीदते रहते हैं। माल में आप किसी भी माल में जाओ तो कितनी भीड़ होती है। तो इसलिए ये भी देखना है कि हम, जो बाबा ने हमें सिंपल लिविंग बताई है, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, वो उससे भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। बाबा हमें कहते हैं ना कि हमारी अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए, तो हमारे पास वही रहना चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। अब बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि लास्ट में हमें अंत समय कुछ भी याद ना आए। ब्रह्मा बाबा ने क्या एग्जाम्पल हमारे सामने सेट की, उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लास्ट में मेरी कौन संभाल करेगा या क्या होगा। तो भाव ये कि हम उतना ही रखें, इसको हम कहते हैं सिंपल लिविंग, या आजकल लोग उसको मिनिमलिस्टिक लिविंग भी कहते हैं, कि उतनी ही चीजें हों जिनसे हमारा गुजारा हो सके। हम पहले दादियों के अनुभव में सुनते हैं तो उनके पास लिमिटेड ड्रेसेस होती थी, जगदीश भाई का भी अनुभव सुनते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना है, वो जो सिंपल लिविंग है उस पे हम कितना चलते हैं। बाबा ने हमें बहुत चीजों से सेव कर दिया, हम कुछ ऐसा नहीं खरीदते जो अननेसेसरी हो। लेकिन अभी तो देखिए दुनिया में तो वातावरण यही है ना, खरीदते रहते हैं, मार्केटिंग होती है, आज ये नई चीज आ गई, कल वो नई चीज आ गई। लेकिन इनडायरेक्ट तो वो हम एनवायरनमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी होता है उसमें वो जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस है, फॉसिल फ्यूल्स है, वो सब खर्च होते हैं। अभी वो कह रहे हैं कि भाई हम जो सिटी बसेस हैं वो यूज करें, अपनी गाड़ी का हम यूज करें। दिल्ली की बात सुनते हैं ना, कभी कभी वो ऑड इवन भी कर देते हैं। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमारी जरूरतें, मैं ये नहीं कहता कि हम कोई अपने आप को कष्ट पहुंचाएं, लेकिन अपने आप को हम ऐसे चलाएं कि जिससे हम सुखी भी रहें और हम किसी चीज पर निर्भर भी नहीं हो। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी लाइफ में सिंप्लिसिटी कैसे आए, हम अपने आप को एडजस्ट करें। वो कनेक्टेडनेस बहुत जरूरी है, प्रकृति के साथ कनेक्टेड रहें, अपने संबंधों के साथ कनेक्टेड रहें। लोगों को प्रेशर किस चीज से होता है, रोल मतलब वो संबंध। आज देखें आज की दुनिया में परिवार कितने टूट रहे हैं, संबंधों में मधुरता नहीं है। एक मिनट का धीरज जो है, जो बाबा ने हमें दैवी गुणों की बात कही, जो हमारा धारणा का सब्जेक्ट है, पेशेंस के लिए दादी जानकी भी कहती थी कि धीरज, धीरज के ऊपर कितना महत्व देते थे, कहते हैं पेशेंस टेक्स अवे द पेन ऑफ माइंड। थोड़ी देर का धीरज हमें कितनी मुश्किलों से बचा देता है। और अब साइंस रिसर्च में ये बता रही है कि जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, जो लोग धीरज रखते हैं, जो लोग टॉलरेंट होते हैं, जो लोग सहयोग देते हैं सबको, उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है। तो हमें बाबा तैयार कर रहा है, जैसे हम कहते हैं ना कि देवताओं की निरोगी काया होती है, उसके लिए हमारी प्रेपरेशन चल रही है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, अब उस समय जो आयु होती है 150 साल होती है, उसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहा है। ये जो दिव्य गुणों की धारणा है, ये धारणा हमारे को कंट्रीब्यूट करता है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। बाबा कहते हैं ना योग से हमारी आयु बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? योग में हमारे संकल्प शांत हो जाते हैं, योग में हमारे संकल्प कम हो जाते हैं। दादी जानकी कभी कभी कहती है कि बाबा को, भगवान को कहते हैं ना असोचता, अभोगता और अकर्ता, लेकिन हम सबको भी असोचता बनना है। हमें फिक्र तो कोई किसी बात की नहीं है ना। जब असोचता बनेंगे, अकर्ता, करण करावन हार तो वो है, अभोगता, किसी चीज में हमारा रस नहीं हो, किसी चीज में हमारी वृत्ति नहीं जाए, तो वो जो सारी धारणाएं हैं, ये धारणाएं हमारी लंबे जीवन में कंट्रीब्यूट करती हैं। जो लोग खुश रहते हैं, जो लोग ईमानदार हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रांग होता है, उनको बीमारियां कम आएंगी। ये अब रिसर्च बता रही है। बाबा ने तो हमें शुरू से ये अटेंशन खिंचवाया। एक किताब मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, वहां एक डॉक्टर, उसका टाइटल था व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो उसमें उसने एक ही बात लिखी थी कि जो लोग गिविंग दाता है वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु होती। तो बाबा ने तो हमें दाता बनाया है ना। हमारी जो देने की प्रवृत्ति है वो बहुत सूक्ष्म है। हम तो चाहते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई अशुभ भाव भी नहीं आए। अगर आप मुस्कुरा के किसी को मिलते हैं, चेयरफुल होके रहते हैं, हमेशा लोगों के साथ सिंपथाइज करते हैं, उनकी एनर्जी को बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि हमें रहम दिल बनना है। जो हमारे भाई बहने मुश्किल में हैं, उनको मुश्किल के समय हम अगर मनसा सेवा भी करते हैं, साकाश भी देते हैं, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनके पास पहुंचता है ना, उसका भी महत्व है। वो भी हमारी जीवन को, हेल्थ को बढ़ाता है। तो कुछ भी, जो कुछ भी बाबा ने हमें सिखाया है, वो हमें प्रेपरेशन है कि हमारी लंबी आयु कैसे होगी, हम सदा स्वस्थ कैसे रहेंगे। अभी से जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम अपने अंदर वृत्तियां क्रिएट कर रहे हैं वो सब हमें मदद करेंगे। अभी आप देखिए, हम कहते हैं कि अंत समय, लेकिन अंत समय के लिए प्रेपरेशन भी तो चाहिए हमारी, कि हम बाबा ने जैसे जो बैगरी पार्ट की बात बताते हैं, कभी ऐसा समय था कि भाई नहीं था तो भी मैनेज हुआ, तो हमारी भी जो लिविंग स्टाइल है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी हो हम किसी भी मुश्किल में अपने आप को मैनेज कर पाए। अभी जैसे पानी की बात है, पानी को हमें सेव करना है, हम चाहें तो हम आधी बकेट से भी स्नान कर सकते हैं, चाहे तो हमें दो बकेट्स भी कम है। तो हमारी नेचर ऐसी बननी चाहिए कि हम बाबा जैसे कहते हैं कम खर्च बाला नशीन। तो ये सारी चीजों से हम अपने एनवायरमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा जो जीवन है, बाबा जी कहते हैं कि हमारा जो एक एक पल है वो महत्वपूर्ण, एक एक संकल्प, एक एक श्वास, तो वो जो समय का महत्व है वो भी बहुत जरूरी है। कि हम वो मेरे एक मित्र थे, वो कहते थे इट इज स्ट्रेसफुल टू रीच इन टाइम बट इट इज स्ट्रेस फ्री टू रीच बिफोर टाइम। यानी जो समय से हम पहले करते हैं उसमें दबाव नहीं आएगा, हम सोचते हैं कि समय आएगा तब हम कर लेंगे। बाबा ने भी कहा है ना कि समय आपका टीचर थोड़ी बनेगा। तो पहले से ही हमें अपने लाइफ स्टाइल को, अपनी जीवन पद्धति को ऐसे बनाना है कि जो हमें लास्ट में कोई भी मुश्किल ना आए, कोई भी कठिनाई नहीं आए। और फिर हमारे जीवन में जैसे गोल्स होने चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि एवरी डे आई हैव टू बी बेटर। सेवा भी है हमारे जीवन में, लेकिन हमारी स्थिति भी है, हमारी धारणाएं भी हैं, दूसरों को सहयोग देने की भी बात है। तो वो बहुत जो बाबा ने अभी हमें लास्ट में हम सुनते हैं बड़ों से कि दुआएं दो और दुआएं लो, वो कैसे मिलेंगी दुआएं? दादी जानकी कहती थी जब वो नर्स थी तो उनका लक्ष्य ये होता था कि मैं जिसकी संभाल कर रही हूं उसको जो जरूरत है मैं उसके कहने से पहले उसकी जरूरत पूरी कर दूं। तो जब हम समय किसी की मदद बिना कहे करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, उससे दुआएं मिलती हैं। अगर मान लीजिए मुझे पानी की जरूरत है और मुझे पानी मिल जाए तो उस व्यक्ति को मैं कितनी दुआएं दूंगा, लंबे रास्ते पे जा रहा हूं, क्लीन वाटर मिल जाए। पुराने जमाने में लोग पानी के लिए प्याऊ खोलते थे, कुछ कोई घड़े रख देते थे। तो भाव क्या होता था कि जिसको जरूरत हो उसको समय पर मिल जाए। तो हमें भी ये देखना है कि समय पर हम किसी को मदद करते हैं, जिस चीज की उसको जरूरत होती है उसकी दुआएं मिलती है। आज दुनिया में जरूरत किस चीज की है? दुनिया में निराशा है तो उनको आशा देने की जरूरत है, दुनिया में अंधकार है, अनवेयर है, उनको पता ही नहीं, कुछ बाबा कहते हैं उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो उनको अगर राइट ज्ञान मिलता है, राइट अवेयरनेस मिलती है, जागृति मिलती है, तो हमें दुआएं मिलेंगी ना। तो दुआएं इस बात से भी मिलती हैं कि मान लीजिए हमें किसी ने कुछ कहा और हमने उसका उस बात से प्रवोक नहीं हुए, वो भी दुआएं मिलती हैं कि हमने स्टेबिलिटी दिखाई। दुआएं मिलती हैं आज्ञाकारी होने से, दुआएं मिलती हैं फेथफुल होने से। अगर हम यज्ञ के प्रति लॉयल रहते हैं, फेथफुल रहते हैं, उससे हमें दुआएं मिलती हैं। ऑबिडियंट होने से दुआएं मिलती हैं। तो वो दुआओं से भी हमारा जीवन, अब लोग जैसे बड़ों के पास जाते थे तो क्या जो हम लोग सुनते थे बुजुर्गों से, भाई आयुष्मान रहो, लंबी आयु, स्वस्थ रहो, तो वो दुआएं काम करती हैं। तो इसलिए हमारा हर एक कर्म ऐसा होना चाहिए, हमारी हर एक संकल्प ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें दुआएं मिले, हम अपने जीवन में भरपूर हों। तो जो कनेक्टेडनेस है, अभी देखिए हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी सेवा स्थान पे जाते हैं, तो जब सेवा स्थान पे जाते हैं तो हमें क्या लगता है? जैसे हम अपनों के बीच में चले गए, महसूसता तो यही आती है ना। तो वो अपनेपन की महसूसता सबको हमारे से भी आए। बाबा ने कहा ना कि आप स्टेम हो, आप जो रूट हो कल्प वृक्ष की, तो आपसे सब ब्रांचेस निकली हैं। तो हमारे मन में कोई भी किसी के प्रति भी नेगेटिव संकल्प नहीं हो, तो वो जो मन की शुद्धता है वो हमें स्वतः ही स्वस्थ बना देगी। स्पिरिचुअल, जैसे वो लोग कहते हैं ना, जो WHO की डेफिनेशन है, वो मेंटल स्पिरिचुअल सोशल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर किसी की स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी तो वो मेंटली भी स्ट्रांग होगा, वो फिजिकली भी एक्टिव होगा और दूसरों को सोशली भी अवेयर होगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एक मेरे मित्र थे चंडीगढ़ में, उसको एक बीमारी हो गई थी जिसको हम एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। वो बिस्तर पे ही था, कहीं जाता भी था तो स्ट्रेचर पे जाता था, लेकिन वो बहुत अच्छी कविता लिखता था, सबकी मदद करता था, एक संस्था चलाता था जो लोगों को प्रोफेशनल एजुकेशन देते थे। तो भाव ये, फिजिकल हेल्थ में कुछ लिमिटेशन आ भी जाए, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग है तो हम फिजिकल हेल्थ को भी कंकर कर सकेंगे। अब दर्द तो सबको होता है, लेकिन सफरिंग सबको नहीं हो। दादी कहती थी, दर्द तो है लेकिन हमें कष्ट सफरिंग नहीं हो। वो तब होगा जब हमारा मन शक्तिशाली होगा, हमारी आत्मा पावरफुल होगी। क्योंकि ये कलयुगी वातावरण है, तमो प्रधान वातावरण में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फिजिकल एलिमेंट आएगी, कुछ एज रिलेटेड भी होती है आएंगी, लेकिन हमें उनके लिए भी उनकी भी संभाल करनी है। ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनकी राय लें, जो वो परहेज बताएं वो परहेज भी करना है, दवा भी लेनी है, लेकिन सफरिंग नहीं हो। मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूं, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो गठिया हो गया, मैं तो चल नहीं सकता, ये नहीं हो। सफरिंग का मतलब ये कि हम अपने आप को एक नेगेटिव मैसेज दे रहे हैं। वो कभी कभी हम सुनते हैं ना यज्ञ में, वो बोलते थे कि कोई कहता था कि मेरे तबीयत ठीक नहीं है, तो तबीयत ठीक नहीं है तो अच्छा आप रोटी तो बेल सकते हो, अच्छा रोटी भी नहीं बेल सकते तो रोटी पकी हुई रोटी को घी तो लगा सकते हो, यानी किसी तरीके से तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यज्ञ में हम जो कर्मणा सेवा, मेरा कहने का भाव यह कि फिजिकल एलिमेंट्स हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, होती है फिजिकल एलिमेंट्स, लेकिन फिजिकल एलिमेंट्स को भी हम मैनेज करना सीखें, चलना सीखें। उस समय ये नहीं सोचें कि योग से ठीक हो जाएगा, अगर इलनेस हुई है तो इलनेस का हमें उपचार करना है, उसके ऊपर अटेंशन देनी है, ध्यान देना है। वो उस समय कई लोग सोचते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, बहुत से लोगों को मैंने अब डायबिटीज हो गई, योग से डायबिटीज तो नहीं ठीक होगी, परहेज तो करना पड़ेगा ना, शुगर को कंट्रोल तो रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर अनकंट्रोल्ड रहेगी तो किडनीज पे असर करेगी, फिर किडनीज खराब हो गई तो डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, छोटी सी आग हो तो उसको बुझाना आसान है। तो ऐसे जब शुरू में सिम्टम्स होते हैं, तो जब भी कोई सिम्टम्स हमें नजर आता है, कोई तकलीफ नजर आती है, तो हमें उसको अटेंशन देने की जरूरत है, उसको इग्नोर नहीं करना। अगर मुझे बैकएक हो रहा है तो मुझे ये देखना है बैकएक का कारण क्या है, उसको बोलते हैं एस फैक्टर कहते हैं, अटेंशन कनेक्ट करें क्यों हो रहा है और फिर एक्सप्रेस करें कि नीड क्या है। हमें अपनी तकलीफ को छुपाना नहीं है। कई बार हमारी बहनें बहुत बिजी होती हैं, सेवा में बहुत बिजी होती हैं, तकलीफ होती है, सोचते हैं ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, कंसल्ट करें। अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो वो भी करें। तो बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाती है उतनी जल्दी उसका इलाज हो जाता है। कैंसर के लिए तो ये खास तौर से है। नीचे शांतिवन के पास हमने ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर बनाया खास अपनी बहनों के लिए, ताकि शायद नहीं महसूस करें। तो बीमारी कुछ भी होती है उसको हम इग्नोर नहीं करें, उस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई भी टाइम से खानी है, खाने का परहेज भी करना है और ब्लड प्रेशर चेक भी करवाते रहना है। अगर मान लीजिए मुझे कभी, मैं ठीक चल रहा हूं, मेरा सांस चढ़ना शुरू हो गया नॉर्मल एक्टिविटी में, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं कि सांस चढ़ने का कारण क्या है, नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें हर चीज पर ध्यान देना है। अब देखो, साधना को या मेडिटेशन को हमारे कॉमन भाषा में तो ध्यान ही कहते हैं ना, तो ध्यान हमें अपने शरीर पर भी देना है, ध्यान अपने सारे रिसोर्सेस पर देना है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हमें ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि दादी जानकी को भी और जगदीश भाई को भी जब अव्यक्त बाप दादा मिलते थे कि शरीर का ज्ञान भी जरूरी है, शरीर को हमें कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है। सडनली मुझे, मान लीजिए एक दिन मुझे लगा कि मुझे कम नजर आ रहा है, मैं तुरंत डॉक्टर के पास पता लगा के फिर कि कुछ न कुछ चश्मा चेंज करने की जरूरत है। तो भाव ये है कि हमें 360 डिग्री अपना ध्यान रखना है, अपने मन का भी ध्यान रखना है, अपने तन का भी ध्यान रखना है और अपने भोजन का भी ध्यान रखना है, तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है, तो अपने विचारों का भी ध्यान रखना है। तो इसलिए जब हम पूरी ये एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, हमें तो ऐसा प्रयास करना है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े अगर हम अपने हेल्थ की संभाल करेंगे। बहुत सी चीजें अवॉइड की जा सकती हैं, हम लंबे समय तक जी सकते हैं। लेकिन अभी आप देखो तो यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमने कभी सुना नहीं था कि 30 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक होगा। सिम्टम्स होते रहते हैं, लोग इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, समझते हैं गैस है, कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें अवेयरनेस जरूरी है कि जैसे हम चल रहे हैं अभी, देखिए वैसे नॉर्मल आप देखो हमारे जितने भी सिस्टम है, अब हमारी सांस अगर चल रही है तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें कुछ सांस लेने की तकलीफ होगी तब हमें पता लगेगा कि हमें सांस लेने में डिफिकल्टी है। हमारी डाइजेशन नॉर्मल चल रही है तो हमें पता ही नहीं है, हम खाते हैं आराम से, चलते फिरते कुछ हमें ऐसा, जैसे हमें इनडाइजेशन होगी तब पता लगेगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट है। तो नेचुरल और स्वाभाविक रूप से जब सब कुछ चलेगा और हमारी लाइफ नेचुरल रूप से चलेगी तब हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमें यही सोचना है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप पर ध्यान देना है, हर चीज सोच समझ कर करनी है। सोचना भी सोच के है, चलना भी सोच के है कि जरूरी है, संबंध भी अपने मधुर बनाने हैं, एनवायरमेंट को भी क्लीन रखना है, नींद भी अच्छी करनी है और बाबा को अपना साथी बनाकर चलना है, तो फिर सब कुछ ठीक लगेगा। ओम शांति।
फ्रोजन शोल्डर।
देखिए फ्रोजन शोल्डर भी क्यों होता है, कोई ना कोई हमने एबनॉर्मल एक्टिविटी की, मान लीजिए आप कुछ बोझ उठाते रहे हैं, तो उसके लिए तो एक्सरसाइज ही है, एक्सरसाइजेस हैं, शॉर्ट वेव डायथर्मी ले सकते हैं, एक्सरसाइजेस करेंगे, एक पेंडुलम वाली एक्सरसाइज होती है, बहुत सिंपल है, जैसे हम हाथ को आगे पीछे रहें कुछ वेट उठा के, पानी की बॉटल ही उठा के, तो पेंडुलम एक्सरसाइज से भी वो ज्वाइंट खुल जाता है। पर किसी को बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको हड्डी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। कभी कभी वो अंदर इंजेक्शन भी लगाते हैं सोजिश को रिड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज ही सबसे जरूरी है।
बंजी आप पूछें।
ओम शांति भाई जी। भाई जी मेरा सवाल भी पेन से ही रिलेटिव है। इस समय का जो मेन बीमारी है वो हर जॉइंट में पेन, चाहे वो छोटी जॉइंट हो या बड़ी जॉइंट हो, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं पेन के लिए तो एक आयुर्वेद है, एक अपना अंग्रेजी जो मेडिसिन है, तो कहना ये है कि उलझ गए हैं क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये खाना है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट भी होता है, उसके बाद भी रिलीफ नहीं है उसका। तो क्या कुछ ऐसा है कि जैसे हम लोग तो शुद्ध खान पान भी है, एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बाद भी उसमें थोड़ा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। मैं खुद पिछले 1.5 साल से परेशान हूँ इस बीमारी से।
पहली बात तो ये कि जो एक्सपर्ट हो ना उसके पास जाना चाहिए, जो उस बीमारी के एक्सपर्ट हैं। अभी मान लीजिए गठिया है, रिमेटाइड है, तो रिमेटोलॉजिस्ट होते हैं या ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, उनके पास जाना चाहिए। आयुर्वेदा भी काम करता है, लेकिन कोई भी चीज, कोई भी इलाज आप शुरू करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं कि आज इससे इलाज करवाया, नहीं ठीक हुआ, फिर दूसरे से शुरू कर दिया। एक कंसिस्टेंसी चाहिए। उसी डॉक्टर के पास जाएं जिससे जो आपको कहे कि अगर आपको दवाई असर नहीं कर रही तो फिजिकल थे, कोशिश ये करें जितना हो सके दवाई नहीं खाएं, एक्सरसाइज से, फिजिकल थेरेपी से, मसाज से, आयुर्वेदिक पंचकर्मा होता है उससे ठीक हो जाए आपका जॉइंट। हमारे पास मैग्नेट थेरेपी है, लोग आके मैग्नेट से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनका गठिया उससे ठीक हो जाता है। तो हर एक की प्रकृति के अनुसार उसके लिए दवा होगी, लेकिन ये जरूरी है कि जो भी जिसको भी आप कंसल्ट करें वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने फील्ड में, उससे उसके पास ही जाएं। कभी कभी क्या होता है, जो भी कोई हमें बताता है हम उसकी बात को शुरू कर, वैसे तो देखो कुछ नेचुरल चीजें हैं जैसे हल्दी है या अदरक है, ये सब चीजें जो है ये शरीर को इम्यूनिटी भी प्रदान करती हैं और ये गठिया वगैरह से भी दूर रखती हैं। लेकिन आपको जब हो गए तो आप एक्सपर्ट को दिखाएं, रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो फिर ये बताएंगे कि आपको गठिया किस कारण से है। एक तो होता है एज के हिसाब से, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और कभी कभी किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो उसका इलाज डिफरेंट होगा। तो वो आप एक्सपर्ट को कंसल्ट करेंगे तो आपको उससे फायदा होगा।
और कोई है तो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम पूरा करेंगे। एसिडिटी के लिए क्या करें? एसिडिटी के लिए
वो तो बहुत सिंपल है, उसके लिए तो भोजन की बात है, हम भोजन क्या लेते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा ना, भोजन के बाद थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, थोड़ी भी डिफरेंस, थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए नींद से और खाने से। और खाना हम जैसे वो कहते हैं ना, खाना हमेशा 3/4 स्टमक हमारा फुल हो, लेकिन हमें पता ही नहीं लगता, जब हम खा लेते हैं ज्यादा तब पता लगता है कि स्टमक फुल हो गया। तो इसलिए हम वो लोग कहते हैं कि ये जरूरी है कि हम खाने पे हम वो चीजें, हमें पता होता है, हम लोग बहुत बार जानते हैं कि ये चीज मुझे सूट नहीं करती, लेकिन क्योंकि टेस्ट को अच्छी लगती है तो हम खा लेते हैं। तो इसलिए वो ध्यान रखें कि एक तो बासी भोजन नहीं होना चाहिए, फ्राइड फूड नहीं होना चाहिए, सिंपल फूड हो और उसमें फ्रूट्स ज्यादा हो, सैलेड हो, वो सब चीजों की मात्रा चाहिए, फाइबर होना चाहिए, ये सब चीजें जो है गैस को प्रिवेंट करेंगी।